ओम शांति। किसने किसके लिए ज्यादा इंतजार किया है? बाप ने हमारे लिए इंतजार किया है संजय भाई कि हमने बाप का इंतजार किया है? ज्यादा किसने किया है? कितने साल से किया?
बाबा ने किया
2500 से। और बाबा ने? जब बाप को टाइम मिलता है तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं। ज्यादा इंतजार किसने किया है?
बच्चे ज्यादा करते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा बाप करते हैं।
अच्छा, बाप ज्यादा करते हैं।
गड़बड़ होता है तो भी तो।
एक युवक एक सद्गुरु के पास जाता है जो कि वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, एक फकीर, और उससे कहता है कि मुझे भगवान की तलाश है, परंतु उस भगवान तक पहुंचाने वाले उस गुरु की भी पहले तलाश है, तो कृपया आप मुझे उस गुरु की कसौटी बताओ कि वो गुरु कैसा होगा। तो वो फकीर कहता है, ऐसा ऐसा एक वृक्ष होगा और उस वृक्ष के नीचे ऐसा ऐसा एक व्यक्ति बैठा होगा, उसका ये हुलिया होगा, चेहरा होगा, सब कुछ इस तरह होगा। इसके पहले कि वो पूरा करता है, व्यक्ति जो युवक है चल पड़ता है ढूंढने उस युवक, उस सदगुरु को बहुत ढूंढता है, उस वृक्ष को ढूंढता है नहीं मिलता है, उस सदगुरु को ढूंढता है नहीं मिलता है। 30 साल गुजर जाते ढूंढते ढूंढते, पर ना तो वो गुरु ना ही वो कसौटी, कुछ नहीं मिला। आखिर सोचता है अब लौट चलो, और लौट आता है वहीं उसी वृक्ष के पास, तो हैरान होता है ये तो वही वृक्ष है और ये जो बताया था उसने ये ऐसा ऐसा होगा, ये वृद्ध व्यक्ति तो वैसा ही लग रहा है और ये तो वही व्यक्ति है जिसने मुझे कहा था, जहाँ से वो चला गया था। और वो उसको पूछता है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? वो कहता है, मैं तो बता रहा था पर तुम्हारे पास आंख ना थी। ये वही वृक्ष है और वो बूढ़ा आदमी भी मैं ही हूँ जो तुमको भगवान तक ले जाने वाला था, परंतु फिर भी तुम्हारी झंझट तो फिर भी ठीक है। इस झंझट में कि मुझे तुम आओगे, मैं 30 साल यही तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम तो फिर भी भटके, पर मैं तो एक ही जगह था केवल इस आशा में कि तुम एक दिन आओगे। तो भगवान कब से इंतजार कर रहा है हमारा? 5000 साल से। इसके लिए जब आए तो क्या कहा, आज छाट छाट कर कोने कोने से क्या बना दिया, क्या बनाया? गुलदस्ता बनाया ना, विश्व के कोने कोने से छाट कर गुलदस्ता बनाया। ब्राह्मण परिवार में क्या है, हर एक आत्मा गुलदस्ते का वैरायटी पुष्प है। ब्राह्मण परिवार में गुलदस्ता, ब्राह्मण परिवार का जो गुलदस्ता है उसका हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा कौन है? वैरायटी पुष्प है। बाबा ने छाट छाट कर लाया एक एक को। तो आज बाबा कौन सा समाचार सुना रहे हैं? संसार समाचार, वर्ल्ड टाइम्स, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया और ये है वर्ल्ड टाइम्स। इसमें विश्व की हालत बता रहे हैं क्या है। तो उसमें अमृत वेले बाबा ने क्या देखा? 2 चीजें देखी। कौन कौन सी?
चिल्लाना।
एक तो चिल्लाना सुना और दूसरा
चलाना।
चिल्लाना किस किस का चिल्लाना? 9 प्रकार के चिल्लाने हैं। 9 तो दिए हैं, उससे ज्यादा है। धर्म नेताओं के 2 बातें हैं राजनीति की, उसमें तो आज बाबा संसार का समाचार सुना रहे, संसार में कितने दुख है, संसार कैसा पीड़ा में है, दर्द में है। सृष्टि को अभी इस समय क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर है सृष्टि, दीमक लग गया है, ग्रहण लगा हुआ है, अभिषिप्त है, शापित है सृष्टि, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला चिल्लाना कौन सा, इधर से बहनों की तरफ से, संसार किस लिए चिल्ला रहा है, भूख, भूख सबसे पहला, भूख भूख गरीबों के लिए, एक तो शरीर की और दूसरी मन की भी है, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, वो भी एक प्रकार की भूख ही है। तो सबसे पहला है भूख, जो गरीब लोग और अमीर लोगों को
महंगाई,
महंगाई मिडिल क्लास, इन्फ्लेशन मिडिल क्लास, डियरनेस इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद में देह के रोग, तन के रोग, नई नई बीमारियां आ रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो 10 साल 100 साल पहले किसी ने सोची नहीं थी और जिनके ऊपर कोई दवाई भी नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां है। और उसके बाद में है टैक्स, कौन कौन से टैक्स,
इनकम टैक्स,
सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टोल टैक्स, इनकम, हाँ हाउस टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एंटरटेनमेंट भी टैक्स होता है। अच्छा तो एक तो टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट
बच्चों का है, पढ़ाई का है, पढ़ाई का है,
बच्चों का नहीं वो बाद में, पहले कुर्सी का टैक्स, चिल्लाना, सबसे पहला भूख हो गया, फिर उसके बाद में तन के रोग, इधर से लगा दो,
दरवाजा बंद कर दो थोड़ा, सीधा हवा आ रही है, कर दो थोड़ा पूरा नहीं,
शरीर के रोग, मन के, मन की अशांति कहाँ है, मन की अशांति नहीं, मन की रोग भी आ जाएंगे उसमें, मन की बीमारियां भी आ जाएंगी, मन के विकार भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा उसमें, साइकोलॉजिकल मानसिक विकृतियां सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो जिनको शरीर के रोग नहीं है उनको मन की अशांति है। उसके बाद और कौन सा चिल्लाना है, कुर्सी का, कुर्सी के लिए उसमें राजनीति भी आ सकता है और गैर राजनीति भी आ सकती है, और फिर राजनीति में क्या, बड़े बड़े अधिकारियों की एक दूसरे से भयभीत है, वो भी एक चिल्लाना है। राजनीति की दो बातें हैं, फिर घर परिवार में क्या है, कौन सी समस्या है घर की, परिवार की समस्याओं का अंत नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, सुबह से चालू होती है समस्या है जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले तो वहां से है, एक दूसरों में मनमुटाव, मानसिक अनएम्प्लॉयमेंट, टकराव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, और परिवार में क्या क्या, बच्चा, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, एडमिशन की चिंता, डोनेशन की चिंता, और संबंधों में कड़वाहट, कटुता और शक, एक दूसरे पर शक, और इनसिक्योरिटी, ये तो एक विशेष है, विशेष इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, और परवरिश, उनकी संभाल, उनमें अकेलापन, उनमें भी डिप्रेशन, वो जो बच्चों की जो बात कही ना, पढ़ाई का बोझ वो भी है, वो एक्चुअली पारिवारिक समस्याओं में बाकी जो भी 9 बातों में से राजनीति की अगर बातें छोड़ दी जाए तो सब आ गया। और भविष्य की चिंता, महंगाई वही इसमें आ गया, परिवार में आ गया, फाइनेंशियल आर्थिक वो भी एक बहुत बड़ी है। इसके लिए कहा ना आनंद है, पारिवारिक समस्या इतनी ज्यादा है कि उसका कोई अंत नहीं है, इतनी सारी परिवार की चिंता है। तो संसार की आत्मा है, दुखी है, पीड़ित है, संतप्त है और पुकार रही है। महंगाई हो गया, और भी कौन सी, 2 राजनीति का हो गया, और फिर बच्चों का, बच्चों को भी पढ़ाई का बोझ है। H2SO4 ने सारा गीत है ना बचपन क्या कर दिया, जला डाला। किताबों के बोझ ने कंधों को झुकाया, सुना है ना, अच्छा गीत है। सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। तो संसार में दुख ही दुख समाया हुआ है। तो बाबा ने आज क्या दुख देखा, एक तो चिल्ला रही है आत्माएं, तो बाबा ने पूछा आप श्रेष्ठ आत्माओं को उनके चिल्लाने की आवाज आती है, इधर है ना, नहीं ठीक है, चलो गीता पाठशाला को आगे बढ़ाते। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये चिल्लाने की आवाज आपको सुनाई दे रही है, श्रेष्ठ आत्माओं को सुनाई दे रही है, प्रश्न भी पूछा और सुनाई देनी भी चाहिए ये भी कहा। तो संजय भाई सुनाई दे रही है, कभी कभी सुनाई देती है, इधर माताओं को, बहनों को, संसार की आत्माओं की पुकार सुनो, बाबा ने बार बार मुरलियों में कहा है। और माता है बाबा से क्या कहती है, पहले हमारे दुख दूर करो फिर हम उनकी आवाज सुनेंगे, हम ही दुखी है, वो हमारे मंदिरों में आ रहे हैं और हम इधर प्रार्थना कर रहे हैं बाबा से। तो एक तो चिल्लाना और दूसरा क्या कहा, चलाना, काम को और जीवन को चला रहे हैं, जैसे आजकल की दुनिया में भी धक्के से और आर्टिफिशियल पहिए से चलाते हैं, वैसे ही सारी सृष्टि जो है, सारा संसार जो है चला रहे हैं। इसमें क्या उदाहरण दे सकते हैं चलाने की, शरीर को भी चला रहे हैं, किससे, दवाइयों से, दवाइयों के धक्के से चल रहा है शरीर,
चला ही रहे ना,
हर चीज चल रही है और सृष्टि भी, पर्यावरण प्रदूषण सृष्टि भी चल रही है,
खेती में भी,
ट्रेन में क्या,
बाहर से डब्बे आते हैं उनको थोड़ा सा करके और चला देते हैं, इंडिया में
बाहर के डब्बों को क्या करते,
बाहर से
यूज नहीं करते जो,
अच्छा
थोड़ा सा रेनोवेट करके
उनको चलाते हैं, चलो ये भी है। और और क्या क्या चला रहे, सृष्टि ऑक्सीजन पर है, पहले थी अभी वेंटिलेटर, जब किताब लिखी गई थी तब ऑक्सीजन था, अभी वेंटिलेटर है, अभी मॉडर्न वेंटिलेटर्स,
बड़े छोटे को चला रहे, छोटे बड़ों को चला रहे,
सब एक दूसरे को चला रहे हैं, राजनेता देश को चला रहे हैं कमार मार के। तो सारी सृष्टि जैसे धक्के से चल रही है, सारी सृष्टि को जैसे पहिए लगे हुए आर्टिफिशियल, जीवन को और हर काम को, तो ये हालत है। बाबा ने आज इस संसार का समाचार सुनाया, इस संसार की हालत सुनाई, जिसमें की आत्माएं चिल्ला रही है, जिसमें की एक तरफ चला रहे है। तो आज किससे कौन बात कर रहा है, बाप दादा, मुरली की शुरुआत विदेशी बच्चों को,
भाग्यवान बच्चों को,
पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को क्या बाप भी खुश होते हैं। जैसे पहले कुछ चल रहा था, मुरली की शुरुआत कहाँ से है, बाप भी खुश होते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कि आप भी खुश हो। मुरली की शुरुआत कितनी अच्छी है कि आज बाप दादा किसको देख रहे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को देखकर भी हर्षित हो रहे हैं। एक एक बच्चा कैसा है, विश्व के शोकेस में क्या है, अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी वैल्यू कितना जानता है, यथाशक्ति जानते, परंतु बाप बच्चों के संपूर्ण स्वरूप को देख रहे हैं, हर एक की वैल्यू को संपूर्ण रूप से जानते हैं। तीन स्वरूप कौन कौन से, वर्तमान फरिश्ता, भविष्य का देवता, और फिर मध्य का, और आदि कौन सा, फिर आदि देवता मध्य का पूज्य और अंत का ये फरिश्ता। तीन स्वरूप बताए, और फोकस किस पे है मुरली का, कौन से स्वरूप पे है तीनों में से, फरिश्ता पे कि ब्राह्मण पे। ए साकारी फरिश्ते, दुख की दुनिया क्या करो,
दुख दूर कर,
दुख दूर कर वह सुखमय दुनिया, या वह सुखधाम लाओगे, सुखधाम तो नहीं बोला है, वो सुख की दुनिया। चलो वो आगे है, पर यहाँ जो फोकस है वो कौन सा है, पूज्य स्वरूप के ऊपर। जड़ चित्रों में भी क्या देख रहे हैं, चैतन्य का आह्वान कर रहे हैं। जड़ चित्रों की भी आज दिन तक पूजा कर रहे हैं, आज दिन तक पूजा कर रहे हैं, और चैतन्य जड़ में भी चैतन्य का आह्वान कर रहे हैं। आएंगे उसके ऊपर। इधर हनुमान बैठे हैं। अच्छा चलो, गाइड फर्स्ट, गार्ड पीछे है, और गॉड ऊपर, गाइड गॉड गार्ड। तो क्या कह रहे हैं वो, भक्त और प्रजा दो है, भक्त और प्रजा। भक्त क्या कह रहे हैं जीवन भाई, भक्त क्या कह रहे हैं, दुख से छुड़ाओ। क्या कह रहे हैं भक्त, हमें दुख से छुड़ाओ। तो भक्त भी पुकार रहे हैं, और प्रजा क्या कह रही है, अरे आप बैठो ना यहाँ, अच्छा लगता। प्रजा क्या कह रही है पीछे से, प्रजा क्या कह रही है, प्रजा को क्या चाहिए, क्या लाओ, वैकुंठ रामराज्य, विश्व महाराजन विश्व महारानी, और वो रामराज्य वो वैकुंठ उसको लाओ, वो चाहिए। ये प्रजा की मांग है, ये प्रजा का आह्वान है, और भक्त चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि अशांति से छुड़ाओ। तो हे फरिश्ते, तो हे टावर ऑफ पीस, क्या करो, शांति का वाइब्रेशन वो बांधेलियों को क्या करो, टावर ऑफ साइलेंस क्या करो, शांति लाओ, शांति की किरणें, टावर ऑफ पीस। तो सबकी नजर आप टावर ऑफ पीस की तरफ है, जैसे बाप टावर ऑफ पीस है। जय जय हाहाकार से क्या करो, जय जयकार करो, ये टावर ऑफ पीस को कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं, फरिश्ते को। दुख की दुनिया क्या करो, दुख की दुनिया को समाप्त कर, ऐसी शायद इस तरह का वाक्य है, सुख की दुनिया लाओ, या सुखधाम लाओ, या सतयुग लाओ। ठीक है, तो ये दो आह्वान कर रहे हैं, विश्व के दुख दूर कर सुखधाम लाओ, तो ये आह्वान कर रही है आत्मा। तो संसार के भक्त आत्मा एक तरफ है, और प्रजा एक तरफ है, ये दोनों आह्वान कर रहे हैं, और ये उनका सारा चिल्लाना है जो हमने लिस्ट की नहीं है। तो अमृत वेले इन आत्माओं को सकाश देनी है, अगर सात बातें बताई, नौ बातें बताई है तो नौ कैटेगरीज, नौ श्रेणियां हैं। सबसे पहले जो भूखे हैं उनको सकाश, या फिर एक संकल्प ये भी है कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो कहां बैठकर भोजन करें, कल्प वृक्ष के नीचे। एक एक निवाला अंदर गया वो विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। या फिर जो भूखी है, जो भूखे हैं स्थूल शरीर, उनको उनकी भी श्रद्धा, उनकी भी प्यास, उनकी भी भूख शांत हो रही है। ये एक सूक्ष्म संकल्प है, बहुत शक्तिशाली संकल्प है। एक तो भूख, टैक्स का क्या करना है, टैक्स वालों को क्या करना है, तो उनको भी अभी दानी बन जाए,
दानी बन जाए,
चलो ठीक
है, गवर्नमेंट
लगे, चलो ठीक है, वो भी है। नहीं तो बाबा याद करते रहते, मुगल गार्डन के मालिक की पगार बहुत अच्छी है, क्योंकि इधर दिया नहीं अभी तक, बाबा की नजर अभी भी है उधर, इधर उसकी जब पगार आ जाएगी तब
ठीक
है, अभी ठीक है। तो शरीर के रोग, जो भी रोगी आत्माएं हैं उनको इमर्ज करना अमृत वेले। जितने एक तो रोगी, उनके चिकित्सक और उनके रोगियों के परिजन, ये तीन लोग हैं। सबसे ज्यादा किसको आवश्यकता है तीनों में से, सकाश की, चिकित्सक को। सबसे पहले चिकित्सक, फिर रोगी और फिर रोगियों के परिजन, क्योंकि चिकित्सक जरूरी है। ये तीन ग्रुप है जिनको सकाश देनी है अमृत वेला। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, तो विश्व के सभी रोगियों को इमर्ज करना अमृत वेले और उन्हें पवित्रता की किरणें देना। फिर अशांत आत्माएं, मन की अशांति, अशांत आत्माओं को इमर्ज करना और उन्हें शांति की किरणें देना, ये कार्य रोज करना है। रोगियों को जरूरी नहीं कि सब निरोगी हो जाएंगे, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी है जो जिनका कोई लाइलाज है, तो शक्ति दे दो उनको, पवित्रता की किरणें दे दो उनको, ये सारे कार्य करने हैं, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। चलो फिर उसके बाद और दूसरी कौन सी आत्माएं हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में भी तीन कैटेगरी, स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स, ये यहाँ त्रिकोण है, इन तीनों को सकाश। फिर राजसत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता, ये तीन सत्ताओं को इमर्ज करो और इन तीन सत्ताओं को सकाश। पहला जो बताया वो दुखी आत्मा है, अशांत आत्मा है, अपवित्र आत्मा है, वो भी एक त्रिकोण है। दुखी आत्माओं को सुख की, अशांत आत्माओं को शांति की, अपवित्र आत्माएं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, संसार की सभी अपवित्र आत्माएं, उन सबको पवित्रता की सकाश दो, ताकि पवित्र जीवन जीने का संकल्प का बीज, उस दिन कहा ना मुरली में था ना, बीज रूप में, तो उनके अंदर वो बीज पड़ेगा और वो इच्छा उत्पन्न होगी कि संपूर्ण पावन बनना है। तो ऐसे अलग 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 सकाश देनी है, ठीक है। उसके बाद छाट कर कोने कोने से लाए, बाबा ने विशेषता सुनाई, ठीक है। उसके बाबा ने, विदेशियों की बाबा ने दो विशेषताएं देखी, कौन कौन सी, बहुत ही गुह्य मनोविज्ञान इसमें समाया हुआ है, डीप साइकोलॉजी। कौन सी लिफ्ट मिली है उनको, साधन को भोग भोग कर, भोग भोग कर, भोग भोग कर क्या हुआ, अब उनसे वैराग आ गया, उनको थक गए हैं, जी भर गया है। जैसे उदाहरण दिया भोजन का, तो अनासक्ति स्वतः ही हो जाती है, इतना भोगा है, अल्पकाल के साधन, अल्पकाल के सुख, वैभव, वस्तु, ये सभी चारों चीजें भोग कर क्या हो गया, तृप्त हो गया। जैसे अभी इसके लिए क्या हो गया, पर एक अच्छी बात हो गई इससे, उससे तो किनारा कर लिया और एक सहारे की तलाश थी और वो सहारा मिल गया, तो सहज हो गया उनके लिए त्याग। और भारतीयों को त्याग करने में क्या होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा अभी भोगा नहीं है, थोड़ा थोड़ा भोगा और इधर आ गए, ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मण बनने के बाद में भी पीछे पीछे मुड़कर थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं, तो उनके लिए सहज, इनके लिए मुश्किल। इनके लिए तो अभी शुरुआत हुई है, बाबा ने कहा है। तो उनके लिए क्या, उनके लिए त्याग स्वतः हो गया, किनारा स्वतः ही कर लिया वो लोगों ने। वो दूसरा पॉइंट है। पहला जो है वो ये है, दूसरा है फिर ये क्या, उनके भाव स्वभाव में एक संस्कार भरा हुआ है। कौन सा? सोचा और किया, डोंट केयर, मर्यादाएं जो है, लोकलाज, लोकापवाद, लोक निंदा, इसकी उनको ज्यादा चिंता नहीं है। कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं। एक बार संकल्प कर लिया कि बस कूद गए। भारतीयों को ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं, रामचंद्र भाई इधर आ जाओ, आप बैठो उधर। तो ये दो विशेषताएं उनमें है। देखो बाबा के सामने कितनी वैरायटी ऑडियंस है, ऐसी ऐसी आत्माएं उसके सामने है और उनकी उसको उनकी वो विशेषता सुना रहा है। कितनी बड़ी बात है और कितनी रोचक ढंग से वो विशेषता सुना रहा है। पहली विशेषता कि उन्होंने भोग लिया, इसके लिए जी भर गया, उनका तृप्त हो गई, इसके लिए वैराग सहज हो गया, त्याग सहज हो गया, नष्ट मोह स्वतः ही हो गए, किनारा सहज हो गया, सहारा, अविनाशी सहारा मिल गया, जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया उनको। तो ये लिफ्ट है और ये दो विशेषताएं उनमें है। तो यहां पर बाबा ने तो धक से, उछल से छोड़ा और छूटा। तो यहां तक की जो मुरली है, इसमें और एक चीज रह गई, ये माताजी वाली पॉइंट लास्ट, तो फास्ट उसमें क्या कहा बाबा ने, लाइन लगी हुई है और लाइन
लंबी होती है,
लंबी हो ही रही है। किसके आगे?
हनुमान
के आगे, वैष्णो देवी और हनुमान। हनुमान किसका यादगार है? हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धिमान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम रसायन तुम्हारे पासा, कदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान किसका प्रतीक है? हमारा। पर हनुमान प्रतीक किसका है वैसे? हनुमान किस भक्ति में, हनुमान को क्या समझा जाता है? हनुमान की विशेषता है जिसके दिल में भगवान है और महावीर है, महावीर गुनी, महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान की भक्ति किसने किसने की है? रुको पहले ये पूछते हैं। नागेश भाई हनुमान की भक्ति की है ना, और राजेश भाई, विट्ठल भाई की है ना, इधर शिवानंद भाई हनुमान जी की भक्ति की है, इधर माताओं ने कम की होगी, थोड़ी थोड़ी की है।
हनुमान के मंदिर में वैसे कई सारे माताएं
नहीं जाती आजकल। तो हनुमान किसका प्रतीक है? महावीर विक्रम बजरंगी, एक तो शक्ति का, दूसरा ब्रह्मचर्य। सबसे पहला तो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है महावीर, इसके लिए कुमार ज्यादा जाते हैं, और सेवक आज्ञाकारी, राम काज करिबे को आतुर, तत्पर है हमेशा सेवा के लिए, और तो आज्ञाकारी, एक अव्यभिचारी भक्ति, एक राम दूसरा न कोई, उसकी भक्ति भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है वो। एक तरफ अंगद है, एक तरफ हनुमान है, दोनों में कौन श्रेष्ठ बताया है? अंगद का जब उदाहरण आता है तो केवल वो पैर वाला आता है, परंतु दूसरे दोनों दो है, एक हनुमान एक अंगद, श्रेष्ठ कौन है और क्यों? हनुमान है, पर अंगद भी तो है, फिर अंगद क्यों कम पड़ गया, कहाँ कम पड़ गया? अंगद की पूजा नहीं होती है, क्यों अंगद की क्यों नहीं पूजा होती है? अंगद भी तो श्रेष्ठ था, शक्ति में उसके जैसा ही था वो भी, फिर
भक्त नहीं
थे। हाँ क्या कहा था उसने, पैर रखा था तो हल्का सा हम अहम भी भाव है उसमें थोड़ा सा, पर हनुमान में ये भाव नहीं है। क्या कहा था, अगर पाव हिल गया तो तो हनुमान थोड़ा निर्मानता हनुमान का गुण है, बहुत ही नम्रचित्त, निर्मानता, शक्तिशाली, महावीर, शूरवीर और आज्ञाकारी, ब्रह्मचारी और बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमान गुणी अति चतुर, बहुत चतुर बुद्धिमान, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि देव मोई हरो क्लेश विकार, क्लेश विकार। तो इस तरह की प्रार्थना की जाती है, इस तरह का चालीसा है, अंगद का ऐसा कोई चालीसा नहीं है। तो वो हनुमान कौन है, हम महावीर। कौन सा अभ्यास तुमको बहुत है, टोली देने का अभ्यास बहुत है, अभी कौन सा अभ्यास करना है, गति सदगति का अनूठा प्रसाद। अनूठा शब्द नहीं है, पर जो पुरानी मुरली है उसमें ऐसे हेडिंग्स लिखे हुए हैं, अनूठा प्रसाद के अंदर ही है ये जो प्रसाद है। कौन सा प्रसाद, गति और सदगति का, ये प्रसाद सबको देना है। और तुम कौन हो, मास्टर गति सदगति दाता, यहाँ ये समान है। अब चिंतन का विषय ये है कि गति सदगति का प्रसाद देना अर्थात क्या और कैसे दिया जाए। गति अर्थात मुक्ति, सदगति अर्थात जीवन मुक्ति। बाबा ने कभी कहा है ना, जो भी आत्मा है उनको स्टैंप लगाओ, मुक्ति साइन करो, मुक्ति। जिसको जीवन मुक्ति में जाना है, जीवन मुक्ति का स्टैंप लगाओ, साइन करो और जीवन मुक्ति। तो जो आत्माएं ज्ञान में नहीं आने वाली है उनको अंत केवल मुक्ति देना, उनको दुखी आत्माएं, विकारी आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं, ये सारी आत्माएं उनको परमधाम भेज देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये है मुक्ति, और आत्माओं को ज्ञान देना वो जीवन मुक्ति है। फिर वो उनके पुरुषार्थ पर है, फिर वो पद क्या पाए, परंतु वो आ जाए जीवन मुक्ति में, पर देंगे कैसे, ये तो कोई वस्तु तो है नहीं ऐसी उठाई और प्रसाद की तरह ले भाई मुक्ति और ये जीवन मुक्ति, क्या करेंगे इसके लिए। ज्ञान सुनाएंगे, ये जो सकाश देने की बात है वही सब कुछ है, ये जो अमृत वेला सकाश देना है ना, वही मुक्ति जीवन मुक्ति देना है आत्माओं को। आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से रूह रियान करो, आत्माओं से बातें करना, उनके दुख दर्द सुनना और उनको सकाश देना, राहत पहुंचाना, रूहों को राहत पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। कहाँ कहाँ एक एक आत्माओं को राहत पहुंचाएंगे। हाँ, तो हम उनके इष्ट देव है, इष्ट देवी है, हमारे साथ कितनी कितनी लंबी बाबा ने कहा लाइन है और वो बढ़ रही है। तो हनुमान ये हमारा स्वरूप है, जिसको मुक्ति जीवन मुक्ति सबको देनी है। दूसरा स्वरूप है वैष्णो देवी, वैष्णो देवी भी किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। देखा है वैष्णो देवी सबने, बारह कतार क्या कट्टर कटरा 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 से, उसकी भी कुछ अद्भुत सी कहानी है। हनुमान ने रक्षा की थी उसकी, वो अंदर चली गई भाग कर, तो वो मंदिर वहां बन गया। हनुमान वो लड़ता रहा कोई एक राक्षस से उसमें हनुमान श्रेष्ठ है, इसके लिए हनुमान और वैष्णो देवी साथ साथ है। क्योंकि कहानी में हनुमान बाहर लड़ता रहा और वो वैष्णो देवी अंदर चली गई गुफा में, कितना 9 मास तक युद्ध चला इसका उसका तो इस तरह से कुछ कहानी है वो, इसके लिए दोनों का साथ में है हमेशा। तो पूरी मुरली से क्या क्या समान है अब तक की, यहाँ तक की, सबसे पहला तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये चिंतन का विषय है। क्यों भाग्यशाली हूँ, कैसा भाग्य मिला है, कौन सा भाग्य मिला है, क्या इस भाग्य के मैं योग्य थी, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा किसी ने। यहाँ पर भी ये बात है, ये मिलन वहां पर भी 31 दिसंबर की मुरली, स्वप्न में भी नहीं था ऐसा मिलन होगा, स्वप्न में भी कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा मिलन होगा। ये मिलन अमूल्य मिलन है, ये मिलन महान मिलन है, ये मिलन न्यारा मिलन है, ये मिलन प्यारा मिलन है, ये न्यारा प्यारा मिलन है, ये मिलन एग्जाम्पल है, ये मिलन साधारण बात नहीं है, ये मिलन वंडरफुल मिलन है, ये मिलन नैनों का मिलन है, वह नैनों का मिलन, ये मिलन
एग्जाम्पल
साकार मिलन है, सम्मुख मिलन है, ऐसा मिलन और संसार में कहीं नहीं है। मधुर मुलाकात, फर्स्ट मुरली सीजन की मधुर मुलाकात है, तो ऐसा मिलन और संसार में कभी नहीं है, कहां नहीं है, केवल यहाँ है। अव्यक्ति मिलन का बाप दादा अनुभव कर रहे, कितना अनुभव करते हो ये भाग्य की बात है। अचानक की लॉटरी है, गोल्डन चांस मिला हुआ है आत्माओं को। तो कहां थे हम? पद्मा पदम भाग्यशाली पर सबसे पहला सम्मान, दूसरा सम्मान विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न है। कृष्ण का फोटो देखा है ना वहां पर, उसको वहां से हटाओ और स्वयं स्थित हो जाओ। तो सोचो कि अब सारे दिन भर मैं यहाँ हूँ और कमलेश भाई जो भी आ रहे हैं पार्टी वाले, अब सबकी नजर मेरे पास है, मेरे तरफ है, सबकी नजर मेरे तरफ, सब मुझे देख रहे हैं, घूर घूर के फोटो निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो चेहरे में कभी भी उदासी कुछ नहीं आना चाहिए, हर्षित मुख, मायूसी, मुरझाई और तीसरा
मगरूरी,
कुछ नहीं आना चाहिए। तीनों में से तीन बातें छोड़नी और तीन बातें धारण करनी है। फिर उसके बाद में ये दूसरा सम्मान, तीसरा सम्मान देवता, जिसके भक्त आह्वान कर रहे हैं, भक्त पुकार रहे हैं, प्रजा आह्वान कर रही है, देवता स्वरूप फरिश्ता सुखधाम लाना है, तो मैं फरिश्ता हूँ। पांचवा ब्राह्मण परिवार में कोटो में कोई कोई में कोई, अच्छा एक तरफ एक पॉइंट तो रहेगा, एक तरफ ये आत्माएं रखो, कोटो आत्माएं रखो, और दूसरी तरफ श्रेष्ठ तुम्हारा वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है, तो इतना नशा है कभी कभी रहता है, सदा कर दो अपने का, आज से सदा, ये नशा अपने भाग्य का नशा, कौन मिला उसका नशा। फिर उसमें एक प्रश्न, बाबा ने तैयारी है, एवर रेडी है, ये भी है, तो मैं एवर रेडी हूँ, ये भी एक समान है। फिर ब्राह्मण परिवार में कौन हूँ? अच्छा वो एक टावर ऑफ पीस, गति मास्टर सदगति दाता, वो एक समान। उसके बाद में और ब्राह्मण परिवार में क्या वैरायटी, ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प, वो मैं, तो ये यहाँ पूरा हुआ। उसके बाद में फिर विदेशियों की मुलाकात, फिर आ जाओ किसमें, मॉरिशस में आ जाते हैं पहले, पहले मॉरिशस। तो मॉरिशस वाले, हम मॉरिशस के इधर, मॉरिशस की क्या वहां पर शिवरात्रि की छुट्टी मिलती है, सुबह बताया है बाबा, सब बहुत खुश होगी, बाबा को हमेशा ये जो है ना फीलिंग कि शिवरात्रि की छुट्टी तुम देते नहीं, दो तीन बातें ऐसी है कि जो उसको बहुत इधर, पहले तो सर्वव्यापी कहा, एक को भी, जिस जिसने कहा एक एक को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो सबसे मैं हिसाब लूंगा, एक तो ये बात और दूसरा मेरा जगह किसका, इसका नाम डाल दिया, ये दो, तीसरा मेरे शिवरात्रि का हॉलीडे नहीं मनाते, और चौथा स्टैंप मेरे नाम का अब तक नहीं बनाया है, ये बाकी नेहरू गांधी सबके स्टैंप बनाए हैं। तो संजय भाई ये चार बातें हैं बाबा की।
एक और बोला बोला पानी मिला हुआ दूध चढ़ाते हैं सागर मंडी में।
हो जाएगी अच्छा तो बाबा तो मॉरिशस में आना चाहिए, आ जाएंगे, पर उसका भी उत्तर दिया है कि वहाँ पूछा ना ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं आते, रोज ही आते हैं, विश्व भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई सोए पड़े रहते हैं, तो बाप क्या करेगा, अपने पुरुषार्थ पर है वो, तो जिसको कैच करना है कैच कर लेंगे, कैच करेंगे तो सारे दिन के लिए क्या बन जाएगी, वो खुराक बन जाएगी, परंतु पुरुषार्थ की बात है, उस बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है। रूरियान ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो अभी आ जाओ मॉरिशस के ऊपर. क्या कहा मॉरिशस को? लाडले और सिकिलदे बच्चे. तो उनका काम क्या है? रत्नों से खेलना, अखूट खजानों से खेलना. रत्नों से खेलना अर्थात क्या? ज्ञान रत्नों से खेलना अर्थात क्या? ज्ञान सुनना सुनाना, एक चिंतन करना, मनन करना, पठन करना, पाठन करना और याद करना, स्मरण करना, बुद्धि में लाना दूसरों और हर कर्म में ज्ञान का प्रयोग करना, प्रैक्टिकल में लाना और स्वरूप बनना और खेलना. मतलब ये सारी खेलने की परिभाषा है. नए नए पॉइंट्स छाटना और उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, कट शॉर्ट करना. तो रत्नों से खेलना अर्थात अभी जो चल रहा है वो क्या है? यही खेल है. ज्ञान रत्नों से खेलना. दो बातें कही है, एक तो रत्नों से खेलने की बात है और दूसरी एक बात है, और कौन सी? नहीं, आज की मॉरिशस से मुलाकात में नहीं, वो तो है. और यहीं पर दूसरों को मालामाल करना. एक है अखूट खजाने, रत्नों से स्वयं खेलना. और जो लाडले सिकिलदे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? रत्नों से खेलते हैं और मिट्टी में पाँव नहीं रखते. अच्छा चलो ठीक है आज तो. और मालामाल करते हैं दूसरों को. और दूसरी जो बात कही है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है क्या? सुनना सुनाना, यही निजी कार्य है. बाकी प्रवृत्ति में निमित्त मात्र रहते हो, बाकी निजी कार्य ये है. उसके बाद में बांधेलियों से मुलाकात. क्या कहा बांधेलियों को? मनसा सेवा करना है. उसके पहले प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु कैसे है? निवृत्त है. प्रवृत्ति में है परंतु निवृत्त है. हाँ, वो एक बीच में पॉइंट है. मर्जीवा जन्म, वो प्रवृत्ति, वो बांधेलियों से पहले ही है. वो मर्जीवा जन्म है और कर्तव्य उनका है सुनना सुनाना, यही निजी कार्य है. फिर बांधेलियों से और क्या कहा? प्रवृत्ति में रहते ही निवृत्त है. भले तन वहां है परंतु मन यहाँ है. मन को ताला नहीं लगाया जा सकता, तन को ताला लगाया जा सकता है, मन को नहीं लगाया जा सकता. अगर मन, अगर माया जीत है तो मन, कमलेश भाई क्या? मन स्वतंत्र है. कितनी अच्छी बात कही है. माया जीत अर्थात जहाँ विकारों का अभाव है, विकारों की मुक्ति हो चुकी है, समूल नाश हो गया है, वहां पर स्वतंत्र है. उलोच्छेदन, इरेडिकेशन कंप्लीट, अप्रूट, निर्मूल हो गए, उन्मूलन हो गया है विकारों का. ऐसा जो जो स्थिति है माया जीत उसको कहते हैं. वो जहां है वहां पर स्वतंत्रता है, मन स्वतंत्र है.
दूसरे छात्र पर गद्दीला फेंक के उसके घर में निकल के आ गए.
वो तो फिर भी शरीर के ऊपर ताले है. यहाँ तो शरीर के सारे बंधन तो छूट गए परंतु मन है जो नए नए बंधन उत्पन्न करता है. एक बंधन छूटा, दूसरा, दूसरा छूटा, तीसरा. ये उसका स्वभाव है. नए बंधन खुद ही तैयार करता है और खुद ही उसमें फंसता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता है कि छुड़ाओ. ये उसका स्वभाव है. स्वयं ही बंधन निर्माण करता है. क्यों करता है उसे पता नहीं, अच्छा लगता है. एक बंधन निर्माण करता है फिर उसको सुधारने के लिए एक दूसरा बंधन निर्माण करता है. उस भूल को ठीक करने के लिए एक दूसरी भूल करता है और ऐसी भूलों की एक श्रृंखला है जिसको मनुष्य जीवन कहता है. एक भूल, दूसरी भूल, तीसरी भूल, चौथी भूल, चालू ही है. उसका कोई अंत नहीं, उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा है कहीं पर भी. सभी वही कर रहे हैं, ऐसे सोचते हैं. बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन, बंधन. ये बंधनों की बात है. और ये जो बंधन है सारे, जैसे कोई कैदी है, उसको अगर लोहे की जंजीरें पहनाओ तो वो कहेगा छुड़ाओ, पर अगर सोने की पहना दो तो वो भी कहेगा थोड़ी देर रहने दो, और अगर उसमें थोड़ा सा हीरे वगैरह लगा दो तो वो तो कहेगा ठीक है चलो कुछ नहीं, चल जाएगा. बंधन ही सही. अच्छे लगते हैं बंधन, तोड़ने को जी नहीं करता है। पुराने संबंध, पुराने बंधन जो भी है, मर्जी वह वास्तव में अभी तक बने नहीं है, क्योंकि उनको पहने हुए हैं और वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, अदृश्य बंधन है। सेवा नाम तो सेवा अर्थ है, जरूरी है, चाहिए, शरीर है, शरीर की संभाल भी करनी होती है, सब अलग अलग कारण ऊपर से है। कर्मों का फल है, कर्म योग का फल है, साधन। तो जहां मन माया जीत, वहां मन स्वतंत्र है। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। फिर बाबा ने उनको क्या कहा, गोल्डन चांस है उनको, कौन सा, मनसा सेवा का, महादानी बनने का, शुद्ध संकल्प और वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलाने का, ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस फैलेंगे बाबा ने कहा, कौन से, शांति के, वायुमंडल को परिवर्तन करने का चांस है। परंतु ये सेवा करने के लिए स्थिति भी उतनी ऊंची चाहिए, इसके लिए तो शर्त डाली है वहां पर, माया जीत, विकारों का अंश वंश कुछ नहीं होना चाहिए वहां, तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। सब नहीं कर सकते मनसा सेवा। कोई अगर कहे कि अरे तुम तो अभी बीमार हो, करो मनसा सेवा, पूछो आशीष भाई बीमार व्यक्तियों को कितनी मनसा सेवा करते हैं। अगर पहले ही स्थिति शक्तिशाली है और फिर बीमार अगर पड़ गए तो हो सकती है, परंतु पहले ही अगर स्थिति शक्तिशाली नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर तो केवल दुख, पीड़ा, दर्द, चिल्लाना, कंप्लेन, पश्चाताप, चलाना। अरे संजय भाई इसमें तो नंबर वन थे, सुदाम भाई भी नंबर वन थे इसमें, सुदेश बहन भी नंबर वन थी इसमें, मधुबन से जितने गए, नहीं वो भी है। हमने देखा है। अच्छा है, मधुबन से हमने देखा जितने भी गए सभी की स्थिति बहुत शक्तिशाली थी। नहीं तो हम बाहर के भी पेशेंट्स देखते हैं ना, तो कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत बहुत चिड़चिड़े, बहुत स्वभाव ही बदल जाता है बीमार पड़ने के बाद व्यक्ति का, क्योंकि सारी परीक्षा जो आती है बीमारी में ही आती है। जो कसौटी है ज्ञान, जीवन भर कितना ज्ञान योग किया वो वहां पता चलता है, बुढ़ापे में भी पता चलता है। तो मनसा सेवा का चांस है, क्यों, क्योंकि विश्व को किसकी आवश्यकता है, विश्व में अशांति है, इसके लिए इस मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। फिर उसके बाबा ने, इसमें बाबा ने कहा जो विरोध कर रहे हैं उनका, उसके बारे में कुछ तीन चार उदाहरण दिए यहाँ पर, कौन से, आर्य समाज, आर्य समाज अलग, बारिश में कि दिवाली में, दिवाली में। जैसे दिवाली में मच्छर आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, जो विरोध करने वाले, अभी जो शोर करने वाले वो ठंडे हो जाएंगे, तालाब जो है सागर समुन्द्र में समाकर समाप्त हो जाएगा, तालाब का उदाहरण, दिवाली के मच्छर का उदाहरण, और जो शोर कर रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे। इसके लिए जहाँ बाप साथ है वहाँ वहाँ कोई नहीं कुछ कर सकता, वहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता। इसके लिए तुम्हारा कार्य क्या है, क्या आर्य बनाओ, सबको क्या करो, आर्य बनाओ, आर्य अर्थात सुधरे हुए, आर्य अर्थात, आर्य कौन थे, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन हिस्ट्री, आर्य कौन थे, वो तो मुरलियों में रामवंशी आर्य, और सबसे पहले जो पुरातन काल में जो भारतीय थे, मोहिंजोदारो एंड हरप्पा सिविलाइजेशन है, ये जो सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता, वो जो सबसे शुरुआत में द्वापर युग से है, हम हमारे ज्ञान को अगर बाजू में रखे और संसार की जो बातें है उसमें आर्य है, तो आर्य अर्थात प्रगतिशील, आर्य शब्द का ही अर्थ है प्रगतिशील, जो है वो आर्य है, उसमें कई सारी धारणाएं हैं। फिर कोई लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्यंस एंड द्रविडियंस, ये दो है नीचे और ऊपर, तो कई लोगों का धारणा है उधर से आए, पर ऐसा नहीं है, वो इधर ही थे, क्योंकि देवता ही जो है ना, त्रेता के अंत के जो देवता है वही यहाँ पर आर्य कहलाए गए, तो आर्य उन्हीं का धर्म है सनातन धर्म। तो बाबा मुरलियों में इस ढंग से यूज करते हैं कि तुम सभी, सबको आर्य बनाना है, क्योंकि विश्व इस समय क्या है, अनार्य है, तो तुम्हें आर्य बनाना अर्थात आर्य का एक अर्थ है पवित्र, देवता, प्रगतिशील, सुधरा हुआ, इस तरह के अर्थ बाबा प्रयोग करते हैं मुरलियों में, सिविलाइज्ड। तो क्या कहा, बांधेलियों को आर्य बनाना है सबको, ये यहाँ बात कही। और जितना तुम बाप को याद करते हो उसके पदम गुना बाप तुमको याद करते हैं, कितनी अच्छी बात कही। बाबा क्या करते हैं, तुम भले सोए पड़े हो परंतु बाप चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, संभालते हैं।
बाप दादा को नींद करने की जरूरत नहीं, बच्चों को तो नींद करना है।
अच्छा तो परंतु अनुभव हो, ये पुरुषार्थ की बात है। अगर उसी समय अनुभव कैच कर लो तो सारे दिन के लिए खुराक बन जाती है। तो ये थी बात बांधेलियों से और मॉरिशस से, इससे क्या क्या समान है और होमवर्क क्या क्या है यहाँ से। सबसे पहला तो ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हैं। कौन है? मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली हूँ, मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से खेल कर दूसरों को भी मालामाल करने वाली हूँ, भरपूर करने वाली हूँ। दूसरा महावाक्य यह है, जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कर ही क्या सकता है, तुम आर्य बनाने वाली हो सबको। विजयदाता साथ है तो विजय जाएगी कहाँ? हाँ, विजयदाता निश्चित, विजयदाता साथ है तो विजय जाएगी कहाँ? दूसरा क्या था? मेरे बाबा मेरे को मेरे से मिल गए, मेरे बाबा मेरे से मिल गए। ये दो महावाक्य है 31 दिसंबर की मुरली के, ठीक है, याद करना। ये सबसे फर्स्ट मुरली 12 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, जहाँ बाप है वहाँ पर कोई बात आ नहीं सकती। अच्छे अच्छे महावाक्य जो कि याद रखना है, पकड़ लेना है उनको ऐसे एकदम। फिर उसके बाद में, हाँ तो दो हो गए, तीन हो गए, और हम सभी आर्य बनाने वाले हैं। हम हैं नहीं खाली, बनाने वाले हैं दूसरों को, विश्व को आर्य बनाने वाले हैं। फिर मनसा सेवा से विश्व में शांति फैलाने वाले, यही इसी याद में रहो, यही मनसा सेवा है, यही मनसा सेवा है, तो मनसा सेवा करने वाले हैं। ये भी एक समान हो गया। फिर चलो अभी ऑस्ट्रेलिया कंगारू, तो क्या कहा बाबा ने? अरे हाँ, ये पॉइंट रह गया है, चार बातें हैं पेपर्स के लिए, चार बातें कही बाबा ने। पेपर आएंगे तो क्या समझो, चार उसमें लिखी है, 10 हम निकालेंगे, ये क्लास आगे बढ़ रही है। एक, दूसरा अनुभवी बन रहे, दो, तीसरा आज की मुरली से, आज की मुरली में तीन चार तीन तीन बातें हैं, एक चौथी एडिशन है, विघ्न विनाशक की डिग्री प्राप्त हो रही है, और चौथी बाप रक्षक है,
छत्र छाया में,
तो छत्र छाया में अनुभव करेंगे। तो जब पेपर आना उसको क्या क्या समझना है, एक क्लास आगे बढ़ रहा है, ये आज की स्थिति, क्लास आगे बढ़ रहा है, अनुभवी बढ़ रहे बन रहे, और नहीं, और दूसरे पॉइंट, दूसरा ये छोड़ के, इसके अलावा मजबूत बनने के लिए आ रहे, शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहे, बिना पेपर्स के शक्तिशाली कैसे बनेंगे? और उसकी खुशी भी तो होगी ना, कुछ लड़ाई करके युद्ध को जीता तो खुशी होगी, वैसे ही कोई दे दे तो क्या खुशी है। पाठ पढ़ाने आई है परिस्थिति, किस लिए आई है? पाठ पढ़ाने आई है उसको, जो भी परिस्थिति, हर घंटे में एक एक परिस्थिति आ सकती है, इतना परिस्थिति है, हर चीज, हर दिन नई परिस्थिति है, नए रूप से है, हर व्यक्ति से भी नई नई परिस्थिति, एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में नई नई परिस्थिति है, इतना परिस्थितियों का बहुरंग बहुरूप है। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, और हमारी परीक्षा लेने आ रही है, हम कितने शक्तिशाली हैं वो देखने आ रही है, चैलेंज है उसकी, परख रही है हमको कि हम कितने शक्तिशाली है। अभी इतना साल 10-15 साल ज्ञान योग कर लिया, अब देखते हैं कहाँ तक, किस कितने पानी में है।
विदाई लेने आ रही,
विदाई लेने आ रही, अंतिम विदाई, अंतिम विदाई लेनी है, क्योंकि उसको सबसे पहला भक्त हमको यहाँ ही बनाना है संगम पर, माया को, और उतने ज्यादा मजबूत, उतने ज्यादा शक्तिशाली, और ऊंच पद पर विघ्न विनाशक होंगे तो नहीं, जितने हम अनुभव बनेंगे दूसरों को अनुभव भी बना सकेंगे, क्योंकि हमने जो अनुभव एक परीक्षा से हम पास कर गए, ठीक है, अभी ऐसी परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा तो कॉमन है, हम एक परीक्षा से पास कर गए, अभी ऐसी परीक्षा जब दूसरे को आएंगी तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि ये करो, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, रहम दिल भी बन सकते हैं। तो ये जो भी जीवन में परिस्थिति समस्याएं ये जो भी आ रहा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, हर चीज में कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, कमलेश भाई, बस ये दो शब्द याद रखो, संदेश था ना, उन्होंने ही सुनाया था, बाप दादा और कल्याण, और कोई बात नहीं। यहाँ संगम पर जो भी होता है, और ये भी एक पॉइंट है फिर ड्रामा की, ये परिस्थिति आई है इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, कल्याण के लिए आई है ये। चलो फिर ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी बातें, चार पांच टुकड़ों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को प्लानिंग क्या दिया है, अगर बाबा वहां क्यों नहीं आते, फिर बाबा शब्द का क्या महत्व है, ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता क्या है, एसी का टिकट, वो 10-12 वर्षों पहले से आह्वान और इंट्रोडक्शन, शुरुआत से चालू करो या बीच से चालू करें, कहीं से प्लानिंग क्या दी वो बताओ अभी बीच से। नागेश भाई क्या प्लानिंग दी ऑस्ट्रेलिया वालों को, क्या प्लान बनाओ। पिठल भाई क्या प्लान बनाओ। राजेश भाई, संजय भाई क्या प्लान बनाना है ऑस्ट्रेलिया वालों को, जल्दी बोलो। एक्स्ट्रा लेना नहीं है आज। क्या प्लान बनाना है, बहुत अच्छा प्लान। शिवानंद भाई, सर्विस को आगे बढ़ाना तो बढ़ा ली, उसकी तो मुबारक दी, वो तो वहाँ तो सेंटर की वृद्धि करनी है, निर्विघ्न बनना है, स्नेह सहयोग खिटपिट ना हो, ये है होमवर्क। क्या कि सेंटर्स की वृद्धि करनी है, 79 की मुरली है, सेंटर्स की वृद्धि करनी है, और क्या करना है, वो भी निर्विघ्न और स्नेह सहयोग एक दूसरे में, वो उनकी विशेषता है, वो दूसरा पॉइंट, ये बीच का है प्लानिंग। प्लानिंग एग्जाम में बुक्स अलाउड नहीं होती है, नहीं एग्जाम में मोबाइल बैग सामने रखी जाती है, देखा होगा स्कूल में, वहाँ नहीं एकदम सामने, एग्जाम चालू है ना अभी। तो ये थी प्लानिंग। फिर बाबा जादू का शब्द है, उससे चार चीजें होती है, वो बताओ कौन कौन सी, उधर माताओं की तरफ से बताओ, बहनों की तरफ से। बाबा शब्द जो है, ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात, लास्ट पैराग्राफ, बाबा शब्द से क्या क्या होता है, बहुत ही गहरी गहरी बातें बोली है उसमें बाबा ने। मनोज भाई है ना, मुझे दिखे थे आते हुए, हाँ है, बोलो, नहीं दिख रहे कुछ। अनिल भाई, बाबा शब्द से क्या हो जाता है, मुश्किल, मुश्किल, कोई भी बात मुश्किल नहीं रहती है, कोई भी बात मुश्किल, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सदा बाबा के साथ का अनुभव होता है, वो जैसे कि क्या है, रिंग, जादू की रिंग है और महामंत्र भी है, मंत्र नहीं महामंत्र। तो सबसे पहले तो बाबा के साथ का अनुभव होता है, केवल बाबा शब्द कहने से, एक। दूसरा, कोई भी बात मुश्किल नहीं रहती है। तीसरा, अगर बात आ भी जाए तो उसमें करने कराने में निर्विघ्न। तो थर्ड है निर्विघ्न, और चौथा, चौथा क्या, चौथा महामंत्र है, तो उससे क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना। माया बुला सकती, चौथा क्या हो जाएगा, पहला साथ का अनुभव, बाबा कहा और साथ का अनुभव। बाबा अगर है तो जादू की रिंग है, जैसे जादू की वस्तु है, तो उससे क्या होता है, मुश्किल, कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है। और चौथा, तीसरा, अगर मुश्किल है भी तो वो करने करामे निर्विघ्न बन जाते हैं। और चौथा, सदा छत्र छाया में है, जैसे रक्षक है, हाँ वो इधर भी है और मॉरिशस में भी है, दोनों तरफ है, तो जैसे छत्र छाया में चल रहे है, ऐसा अनुभव होता है, ये बाबा शब्द की वजह से होता है। फिर उसके बाद में एसी का टिकट के लिए क्या करना है, दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, एक तो सर्टिफिकेट चाहिए और एक पैसा चाहिए, पैसे कौन से और सर्टिफिकेट कौन सा, बहनों की तरफ से, रुको अभी, हाँ इधर कम बता रहे, हम भी तो कम ही बता रहे। पैसे चाहिए और सर्टिफिकेट, मनी और सर्टिफिकेट, कौन सा मनी और कौन से सर्टिफिकेट, तब टिकट मिलेगा एसी का, नहीं तो जनरल बुगी है और स्लीपर क्लास। विजयी भव ये है मनी, सदा विजयी भव ये मनी। एक वरदान भी था कुछ समय पहले अभी वेनसडे का, विजयी भव पर, उसकी विधि समाना और सामना करना। सामना ब्राह्मण परिवार का नहीं, माया का, और समाना पुराने संस्कार को समाना। चलो तो विजयी भव अगर ये वरदान है तो ये है मनी, और सर्टिफिकेट कौन सा आशीष भाई, आशीष अनिल भाई कौन सा सर्टिफिकेट, हर कंडीशन में सेफ रहेंगे ये है, और वो भी हर परिस्थिति हर समस्या में एक सेकंड में पार करना, ये है मनी। ये दो चीजें चाहिए, एक तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और एक तो माल। तो क्या मिलेगा, एसी का टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एसी की पॉइंट। उसके बाबा बाप दादा कब से आह्वान कर रहे हैं विदेशियों का, 67, 68, 69 से, मतलब 67 से चालू कर दिया है, 10-12 साल लगभग, 79 की मुरली है ना, तो 10-12, तो ये स्वीट आत्माएं हैं। ये आत्माएं जो अभी सुख शांति और आनंद के झूले में झूलते हैं, वही आगे झूलेंगे साकार रूप के, भिन्न भिन्न रूप में, रूप के साथ, कृष्ण के साथ कहो, और जो नहीं तो बाकी देखते रहेंगे। तो एक तो साथ में है या समान है, वो झूला झूलेंगे। तो ये यहाँ है। फिर इंट्रोडक्शन शुरुआत कहाँ से की, ऑस्ट्रेलिया वालों की, सर्विस की बधाई दी ना बाबा ने, अच्छी वृद्धि की है, बाप दादा हर्षित होते हैं, जो पुराने हैं वो भी नए लगते हैं क्योंकि वर्षे के अधिकारी है। बाबा चक्र कहाँ लगाते हैं, नहीं वो अभी टाइम है उसको, अभी इंट्रोडक्शन थे। बिना सहयोग, ये तो विशेषता बताई उनकी, क्या विशेषता बताई, नहीं रूहानी सेवाधारी है वो। फिर बिना सहयोग के ही क्या कर दिया, सेवा की वृद्धि किस आधार से की, बाप के संबंध संपर्क के आधार से सेवा की वृद्धि की, ये ऑस्ट्रेलिया वालों की क्या कहा, विशेषता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ वो है शक्तिया और पांडव, झंडा किसके हाथ में दिया, शक्तियों के हाथ में दिया। शक्तिया क्या है, गाइड, और पांडव क्या है, गार्ड, और गॉड क्या है, छत्रछाया, ऊपर गॉड, इधर गार्ड और इधर गाइड। तो गाइड, बाबा ने प्रश्न पूछा है गाइड को, क्या कितनों को रास्ता बता रही हो, कुमारी समझते हो या शक्तियां समझते हो। वहां पर माया जीत की बहुत अच्छी बात बताइए, एक कौन सी, माया वार करने वाली नहीं, माया पर सवारी करने वाली है, ऐसे हो प्रश्न पूछा बाबा ने,
वार करने वाला
उसको सवारी। जो वार करने वाला है उसको सवारी बनाने वाली, तो ये है माया जीत। मेहनत की है परंतु झंडा उनके हाथ में दे दिया है, हाँ तो मार्क ज्यादा है इधर, गुप्त है पर दोनों बड़े काम के है। 31 की मुरली, दोनों बड़े काम के, भाई और बहन दोनों बड़े काम के है। हाँ मैंने ज्यादा है शक्तियों की बहुत महिमा की। चलो ये यहाँ पूरा हुआ। अभी बाबा से प्रश्न पूछा क्या, कि हमारे इधर क्यों नहीं आते, कब आओगे, क्यों नहीं आते, क्या उत्तर है, रोज आते हैं। और क्या कहा, वो मॉरिशस सोए रहता है, इधर क्या बोला। वो दोनों पॉइंट बहुत सिमिलर है, उधर भी कहा चक्र लगाते, इधर भी कहा चक्र लगाते, इधर कहा विश्व भ्रमण, उधर कहा चक्र लगाते, उधर कहा देख रेख करते, उधर कहा देखते हैं, इधर कहा देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं, और यहाँ रूरियान की बात है, क्योंकि तुम अच्छा जब तुम याद करते हो तो क्या बाप याद का रिटर्न नहीं देगा, तुम याद कर रहे हो ना तो बाप को तो आना ही है, क्योंकि याद का रिटर्न तो देगा ना वो,
रिटर्न के इतना होमवर्क दे के चला जाता है।
फिर उसके बाद में है रूरियान करते हो तो है ना सामने, इसके लिए तो करते हो, नहीं तो कहां से करोगे। पर उसमें फिर बात बताइए, एक है बैठना, एक है मिलन, मिलन के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए तो मिलन हो सकता है, नहीं तो मिलन नहीं होगा, केवल बैठना मिलन नहीं है। तो पिछले संडे के वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात कही थी ना, केवल बैठ जाना शरीर का नहीं, मन भी हलचल अचल हो, मन की हलचल भी समाप्त हो। तो यहाँ बात की गाइड और इसकी, फिर उसके बाद में हो गया ऑस्ट्रेलिया पूरा। और भी कोई पॉइंट है इसमें से? सामान सेवा की वृद्धि करने वाली आत्मा हूँ, रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ, और सर्विसेबल हूँ, सहयोगी हूँ, बाप के अभी सुख शांति आनंद के झूलने वाली आत्मा हूँ, जो बाप समान हूँ, छत्र छाया में रहने वाली हूँ, और गार्ड हूँ, गाइड हूँ, दोनों शिव शक्ति हूँ, मायाजीत हूँ, पांडव हूँ, झंडा फैलाने वाली हूँ, और फिर वो बाबा शब्द, बाबा शब्द से ये सब करने वाली हूँ। जादू का शब्द है बाबा ने कहा, ये महामंत्र है और जादू का शब्द है, ये दो बातें कही है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मुलाकात पूरी हुई। अभी कोई और जो पॉइंट रह गई है कमलेश भाई को बता दो। वर्णन मनन वो कल की मुरली का वर स्लोगन वरदान। तो टाइम की बुकिंग करने वाली ना, टाइम की बुकिंग करो, व्यर्थ का तूफान, स्वयं को मन को बिजी रखने का प्रोग्राम बनाओ। सबसे पहले वर्णन, पहले मन मिलन, मिलन में ही मतलब रू रियान हो गया, सब कुछ आ गया उसमें मिलन की जो भी बातें हैं। फिर वर्णन अर्थात ज्ञान का वर्णन, जो अभी सब मिलके कर रहे हैं वो सेवा, मगन और लगन। बांदेलियों से और एक बात कही थी, अगर इस घड़ी भी अगर मिलन की लगन अगर निर्बंधन हो जाए तो अभी घड़ी में बाबा से मिलन मनाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस तरह का पॉइंट था ना, बाबा से मिलन मनाएगी अगर। तो यहाँ एक बात है कि जो जितना बंधन में उसको उतनी ज्यादा कशिश रहती है, तड़प रहती है, तड़प पूरे ब्राह्मण परिवार हमारे जीवन में। एक तो तब सबसे ज्यादा प्यार रहता है जब नए नए ज्ञान में आए, तब बहुत ज्यादा कशिश होती है, एक तो वो समय है, और दूसरा समय है जब बंधन रहते हैं, तब तो ये दो ऐसे समय है कि जिसमें बहुत ज्यादा कशिश रहती है। तो अभी भी वही कशिश फिर से उत्पन्न करनी है, वही प्यार, वही वो जो शुरुआत के दिन थे जब आए थे तब वो कैसा प्यार था,
पहला प्यार
बाबा से बहुत ज्यादा कशिश थी, क्या करूं और क्या नहीं, मुरली सुनकर क्या लगता था सेवाओं के लिए, अभी जाकर कहीं बस किसी को कुछ तो कुछ सुनाया नहीं है, तो वो जो था ना वो नशा था एक अलग प्रकार का। पर अभी जो नशा है ये मैच्योर्ड नशा चाहिए, फिर वो तो शुरुआत का नशा था, अभी भी नशा चाहिए, नशा तो कम होना ही नहीं है, नशा को तो बढ़ाना है, पर ये अभी सूक्ष्म नशा है। पर इस सूक्ष्म नशे का ही नाम है समान, तब समान की कोई खबर नहीं थी, तब तो बस मिलन के नशे में थे, परंतु अब वो नशा सूक्ष्म होते 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 किसमें परिवर्तन हो जाए, समान में, तब था मैं आत्मा हूं, अब है मैं कौन सी आत्मा हूं। तब तो फिर भी छोटा संकल्प था, पूरा ज्ञान भी नहीं था, पूरी समझ भी नहीं थी, पर उस कम समझ ने ही कितना नशा चढ़ा दिया था, सारे बंधनों को तोड़ दिया था, कितनी शक्ति आ गई थी उस काल में। और अभी इस समान के ऊपर अभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये पीए अभी तो बढ़ गए ना, आगे बढ़ गया है क्लास, तब तो नए नए थे, अभी तो बहुत आगे बढ़ गए, अभी पर ज्यादा मेहनत है, पर अभी परिपक्व अवस्था है, वो तो इमैच्योर स्टेज थी, वो बचपन थे, भगवान उंगली पकड़ के चला रहा था अभी हम स्वयं शक्तिशाली है, इसके लिए स्वयं स्वयं का टीचर बनो, निराधार, किसी का भी कोई आधार नहीं, कोई भी किसी पर भी अवलंबन नहीं, किसी भी प्रकार का, ना पुरुषार्थ के लिए ना और किसी बात के लिए, सब कुछ इस, ये जो मार्ग है पुरुषार्थ का, अकेले का मार्ग है, हरेक को यहाँ अकेला ही चलना है, ना तो किसी के प्रभाव में ना तो किसी के अभाव में, यहाँ हर आत्मा इंडिपेंडेंट अलग है, निराधार संपूर्ण, ये मार्ग ही ऐसा है, किंटका को जो कहते हैं ना, ये कंटकों से भरा हुआ मार्ग है, ये कांटों से भरा हुआ ये मार्ग है, अग्नि पथ है, ये लहू बहेगा, एकला चालो रे, वॉक अलोन, इफ दे आंसर नॉट टू धाई कॉल वॉक अलोन, गीत है रविंद्रनाथ टैगोर का, बहुत सुंदर गीत है। तो इस मार्ग पर अकेला ही चलना है। वरदान साथ चलेंगे, वायदा क्या किया था, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए? समानता। समानता के लिए क्या चाहिए? समर्पण। समर्पण अर्थात मेरा भी अधिकार नहीं और किसी और का भी अधिकार नहीं। बहुत ही सूक्ष्म बात कही है बाबा ने। ये किस पर? किस पर विशेषता? एक तो वस्तु ले लो सबसे पहले, स्थूल। हाँ, आठ प्रकार के समर्पण जो गिनाए थे उसमें सबसे सूक्ष्म एक जो बात है यहाँ पर, वो है ये देह की। ये देह मेरा भी नहीं है और किसी और का भी नहीं है। ये देह जो है किसी और का भी नहीं है। इस देह पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जब मेरा ही अधिकार नहीं है तो किसी और का अधिकार हम कैसे दे सकते हैं? समर्पण होता है ना, ये एक प्रकार का समर्पित करते हैं देह को, जिससे प्रेम है उसके प्रति। ये प्रेम एक के प्रति है, ये देह उसके लिए है। ना तो मेरा है ना ही किसी व्यक्ति का है, ना पुरुष का ना तो किसी स्त्री का। ये यहाँ एक सूक्ष्म बात है। अगर ऐसा है तो उसमें भी कमी आ जाएगी फिर बाबा ने कहा। इसके लिए इस बात को हमेशा याद रखना, ये जो देह है, उस दिन हमने लिस्ट गिनाई ना किस लिए नहीं है, भोग विलास के लिए नहीं है, काम विकार के लिए नहीं है, हिंसा के लिए नहीं है, और बहुत सारी अकर्तव्य करने के लिए, व्यर्थ गवाने के लिए नहीं है, संभालने के लिए नहीं है, संभालने के संभाल करनी है पर श्रृंगारने के लिए नहीं है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। देह किस लिए है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। इस देह का हम क्या कर रहे हैं? इसी देह में रहकर संपूर्ण बनना है। मौज मस्ती ये सब चीज के लिए संगम युग पर तो नहीं है। जो अज्ञानी है उनका ठीक है, उन्हें फिर भी अज्ञानी कहा जाता है, परंतु जो ज्ञान में है वो अगर ऐसा करे उन्हें अज्ञानी नहीं कहा जाता, उन्हें क्या कहा जाता है? महामूर्ख। अज्ञानी नहीं कहा जाता है, उन्हें महामूर्ख कहा जाता है। महामूर्ख परिभाषा यहाँ के लिए दिए बाबा ने। संसार के लोगों को आज तक कभी महामूर्ख कहा क्या? बाबा ने कहा ज्ञानी देखना हो तो यहाँ देखो, अज्ञानी देखना हो तो यहाँ देखो नहीं, महाज्ञानी और ज्ञानी देखना हो तो यहाँ देखो, और मूर्ख और महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। संसार के लोग महामूर्ख नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञानियों को क्या, महामूर्ख तो यहाँ है। सब कुछ पता होते हुए भी विस्मृति की निद्रा में सो जाना, ये महामूर्खता है। संगम युग पर सबसे बुद्धिमान वो है जो अपने श्वासोश्वास, धड़कन धड़कन सबको सफल करता है। ये भी स्लोगन है ना आज, समय और संकल्प और श्वास। तो ये सफलता का क्या मिलेगा? सफलता का आधार है, वरदान मिल जाएगा। यही सफल करो तो यही सफलता का आधार है। परमात्मा क्या? बर्थ राइट है। ये स्लोगन था ना, परमात्र बर्थ राइट है ये। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। कल से हमारी फिर से 69 का भी फिर से वो चालू रहेगा। आज की क्या तारीख है? 10 तारीख ना, और 8 दिन है। 8 दिन में जैसे एक पिछले सीजन की मुरली में कहा था, मनसा वाचा कर्मना कोई गलती नहीं, हाथ उठाओ, वो एक था ना, 12 हाथ उठाए थे बाबा ने, 12 या 14 बार। हाँ, तो उसमें था ना कि मनसा वाचा कर्मना कोई गलती नहीं तो हाथ उठाओ। तो 8 दिन है, मनसा वाचा कर्मना कोई गलती नहीं, इतना अटेंशन ध्यान रखना है, स्थिति को अव्यक्त रखना है। जितना हो सके योग का चार्ट बहुत बढ़ाना है, जितना हो सके ज्ञान का चिंतन मनन बढ़ा देना है। रोज की जो मुरली है उसमें से मुख्य मुख्य उसके ऊपर काम करना है। उस दिन था ना मुरली में विचार सागर मंथन के लिए समय देना पड़ेगा, वैसे ही थोड़ी ना होता है, तैयारी चाहिए। जैसे मुरली जो है एक थीसिस है, जब किसी को थीसिस दिया जाता है तो क्या क्या करता है वो स्टूडेंट? रिसर्च करता है, उसके ऊपर लग जाता है, महीनों उसके पीछे लगा रहता है पूरा उसमें क्या है, कैसा है, कौन सा पार्ट कहाँ है, इस मुरली का उस मुरली से कनेक्शन एसोसिएशन क्या है, बहुत सारी चीजें, तब कहीं जाकर उसका वो थीसिस बनता है। एक एक मुरली थीसिस का टॉपिक है, एक एक मुरली का एक एक पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ का एक एक महावाक्य, एक एक महावाक्य का एक एक शब्द थीसिस का टॉपिक है। तो इतना इसमें बिजी रहना है। ये प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला की गुह्यता, अनुभव के प्रयोगशाला की गुह्यता में जाओ। पिछले हफ्ता के वरदान था ना, इस पर रिसर्च करना है। आप रिसर्चर हो, इस पर रिसर्च करना है दिन रात, और अपने ज्ञान का भी वर्धन करना है दिन रात। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। कमलेश भाई यहाँ बैठे, उसके पास बार बार जाते रहना, लाइब्रेरी का खजाना है पूरा। सारे ज्ञानामृत, जितने ज्ञानामृत है, एक एक करके पुराने पुराने ज्ञानामृत निकालो और उसको पढ़ो। सारे अनुभव उसमें लिखे हुए आत्माओं के, नए नए अभी का भी ज्ञानामृत में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। हाँ, तो ये सारा कुछ निरंतर अध्ययनशील स्टूडेंट अर्थात स्टूडियस, अध्ययनशील निरंतर पढ़ाई, सेवा करते करते भी
सेवा करते भी पढ़ाई,
सेवा भी पढ़ाई ही है, सेवा करते करते ही पढ़ाई। सकाश बाबा ने कहा जब भी आंख खुले सकाश दो, आंख खुली सकाश, चलते फिरते सकाश, उठते बैठते सकाश, हमारा जो अस्तित्व है वही ऐसा बन जाए कि उससे सकाश ऑटोमेटिकली फैलती जाए। पर पढ़ाई दिन रात, पढ़ाई 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 दिन रात, योग 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 योग, क्योंकि काम बहुत बड़े करने हैं, समय बहुत कम है। ऑलरेडी बहुत लेट एडमिशन दी है यूनिवर्सिटी में, क्या करोगे अभी? परीक्षा तो वही टाइम पे है, एडमिशन कब ली किसने कहा? पहले से आना चाहता 69 से अब तक पेंडिंग इतना ज्यादा है, टेंशन आ जाना चाहिए क्या करूं और क्या नहीं। जब जादी जानकी ज्ञान में आई तो कितना 21 साल की उम्र थी उनकी, तब उनको कितना टेंशन हुआ था, डेढ़ साल लेट हुआ था। उसने कहा बाबा अभी मैं क्या करूं, डेढ़ साल लेट, हाँ चिंता हो गई थी क्या करूं। तो बाबा ने कहा तुम 8 बार मुरली पढ़ो। उसने कहा कि अगर मैं नहीं, 6 बार मुरली पढ़ो। उसने कहा अगर 12 बार पढ़ू तो क्या हो सकता है, ये जो डेढ़ साल मेरा वेस्ट गया। तो उसकी तभी चिंता थी हम कब आए। स्कूल चालू होगी जनवरी में, इधर मार्च में एडमिशन ली, अप्रैल में एडमिशन ली, दिसंबर में एग्जाम सबकी है। अभी जो पुराना है बैकलॉग उसको तो करना पड़ेगा ना। अभी रोज का ही नहीं हो रहा तो वहां से क्या करें। अभी प्रश्न ये है सबका, रोज की मूर्ति नहीं होती है, वही तो आज पढ़ा और गई, पता नहीं कहां से कहां चली जाती है। क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स नहीं है, नो शॉर्टकट। निरंतर पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना, एक दूसरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, तीसरा उसकी चर्चा करते रहना, चौथा दूसरों को सुनाते रहना, पूछते रहना एक दूसरों को, बार बार पूछते रहना, आज क्या था, आज इसमें क्या था, आज उसमें क्या था, वो मुरली में क्या था, ये मुरली में क्या था, आज का स्लोगन क्या था, आज का वरदान क्या था, आज का प्रश्न क्या था, आज की मुरली में आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी।
पहले मोड देखना पड़ेगा सामने।
हाँ वो तो है, ज्ञानियों को इंजेक्शन लगाओ तो रिएक्शन होती है। देखना कौन जिसमें ज्ञान की पुरुषार्थ की ज्यादा इच्छा है। चलो उसमें एक बात ऐसी है कि हम उसका मन ही मन में, अगर कोई है ही नहीं तो मन ही मन इमेजिनरी ऑडियंस तैयार करो और उनके सामने उस ज्ञान को सुनाओ कि आज की मुरली का सार आधे घंटे में हमें एक काल्पनिक सभा है उसके सामने सुनाना है। पूछना नहीं है, सुनाना है। तो इस तरह से वो अभ्यास करना है और एसोसिएशन करना, लॉ ऑफ एसोसिएशन, एक चीज को दूसरे चीज से लिंक करना। अगर सब एक विघ्न की बात आई तो आज तक विघ्न के लिए और भी कुछ कुछ कहा है, जैसे विजयी भाव का आया तो तुरंत उस वरदान को खोलो कुछ दिन पहले का और उसको पढ़ो कि वो उसमें क्या था, वो इधर जोड़ो, इधर से उधर कनेक्ट करना, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो ये कुछ बातें ऐसी है कि और बार 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 24 घंटे में जो भी आज पढ़ा वो 24 घंटे में फिर से रिवाइज होना चाहिए तो याद रहेगा, नहीं तो उड़ जाता है। कीप ऑन रिवाइजिंग रिवाइजिंग रिवाइजिंग, एसोसिएट करना, रिवाइज करना, सुनाना, सुनना और उसमें समाये रहना, डूबे रहना, तो वो स्वतः ही होता है, नहीं तो फिर तो मुश्किल है। और वो समय की मांग है, पर अभी समय की पुकार है कि ज्ञानमय, ज्ञान विज्ञानमय हमारी स्थिति हो, शक्तिशाली स्थिति हो। और ऐसी जब स्थिति है तब योग तो पहले ही लगा हुआ है, और जब बाबा के कमरे में आते तो वो बहुत पावरफुल है, फिर वो उसमें मजा है, वो तो पहले ही जिसका लगा हुआ है और वहां जाके अगर बैठ जाओ ऐसी अवस्था में तो वो जो है तुरंत अशरीरीपन का जो अनुभव फास्ट होता है। नहीं तो अशरीर बनने में ही कितना टाइम लगता है, शरीर से पहले डिटैच होने में, आत्मा यहाँ से निकल के सूक्ष्म वतन परम धाम, कितना फास्ट हम शरीर से डिटैच होकर ऊपर जाते हैं, वो है हमारे ज्ञान योग की सफलता, कितना फास्ट देह से निकलकर। नहीं तो सारे दिन भर जो कुछ किया वही बुद्धि में अगर गूंजता रहे शाम के योग में, उसका क्या मतलब है? बाबा के कमरे में तो बैठे है परंतु जिन जिन से मिले उनकी यादें, जो जो हुआ वो बुद्धि में आ रहा है, इसने ये कहा उसने वो कहा, डिटैच्ड वो नहीं हो रहा है, मतलब दिन भर की जो दिनचर्या उसमें कहीं ना कहीं गलती थी, कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, वो ज्ञान में ही नहीं था। वो ज्ञान में ही होगा तो शाम का योग भी शक्तिशाली होगा, जैसे सुबह का योग शक्तिशाली है वैसा शाम का योग भी शक्तिशाली हो जाए, ये हमारी एक चुनौती है हमारे सामने। और उसी तरह सुबह शाम हो गया फिर दिन को संपूर्ण जीवन शक्तिशाली बनाना। अच्छा कल सवेरे कमल भाई का है और मंजू बहन का है, दूसरे परसों चिमन भाई और चंद्रशेखर भाई,
चंद्रशेखर भाई अहमदाबाद जाएंगे तो